इनको झंडे देखकर जाति स्मरण हो गया और फिर शादी करने के पहले दीक्षा ले ली, उनको जानवर देखकर करुणा आ गई तो उन्होंने भी शादी के पहले दीक्षा ले ली। जानवर देखकर, यानी आप जानते ही वो घटना, तो हर मंदिर में चित्र रहते हैं अक्सर कि जो म्लेच्छ राजा आ रहे थे उनके लिए जो भोजन की व्यवस्था हो रही थी, तो एक कटघरे में बहुत सारे निरपराध प्राणी बंधे हुए थे जो करुण ध्वनि कर रहे थे। तो जब भगवान का रथ निकला वहां से तो पूछा कि भाई क्या बात है, ये ऐसे इन जानवरों को क्यों बंधन में रखा गया है? तब फिर जैसा निर्देश दिया गया था उस व्यक्ति को, तो उसने बताया कि जो म्लेच्छ राजा आ रहे हैं आपके विवाह में, उनके लिए ये व्यवस्था आवश्यक है, किसी को असंतुष्टि न हो, इसलिए ये व्यवस्था, वो मांस खाने वाले लोग हैं। तो फिर नेमिनाथ भगवान सन्न रह गए, तो लेकिन नहीं, मैं ऐसे उत्सव को स्वीकार नहीं कर सकता जिसमें किसी छोटे प्राणी को भी पीड़ा पहुंच जाती है। मुझे इन त्रस्त जीवों का घात नहीं कराना अपने विवाह में। और उन्होंने सारथी से कहा कि रथ मोड़ दो। रथ मुड़ गया गिरनार की तरफ, जूनागढ़ जा रही थी बारात, गिरनार शौरीपुर से जूनागढ़। अब जूनागढ़ जाते जाते वो रथ मुड़ गया, बीच में ऐसी घटना हो गई। वहां पर आचार्य गुणभद्र स्वामी ने लिखा है कि लोग अपनी पीड़ा में भी शरीर का मोह नहीं छोड़ पाते, और नेमिनाथ प्रभु ने दूसरों की पीड़ा को देखकर संसार का मोह छोड़ दिया। कितनी बड़ी बात है, अपने ऊपर आफत आती है तो भी मनुष्य का शरीर संबंधी मोह नहीं टूटता, लेकिन उन्होंने उन प्राणियों की वेदना को देखकर छोड़ दिया। उन्होंने रथ मोड़ने के पहले रथ से उतरकर अपने हाथों से उन जानवरों को जंगल में बंधन मुक्त कर दिया था, बड़े प्रेम से, बड़े वात्सल्य से। उन्होंने जिन हिरणों को छुआ होगा वास्तव में वो धन्य होंगे। ये तो अपन कल्पना नहीं करते, इसलिए सब कथा पढ़ जाते हैं। वैसे अगर सिचुएशन की कल्पना करो, सामने उसको दृष्टि गोचर करो, तो जिस हाथी पर वो सवार होते होंगे, असंभव है कि उसको दूसरी बार तिर्यंची योनि मिल जाए। जिस हाथी पर, जिस घोड़े पर तीर्थंकर का जीव उस पर्याय में विराजमान हो, उसको दोबारा तिरिंच पर्याय कैसे मिल सकती है? जिसके माथे पर उनकी चरण रज लग जाए, वो निकट भव्य के सिवा कौन हो सकता है? भगवान है वो, द्रव्य निक्षेप से तो जिनेन्द्र है। अब भाव जिन तो तब बनेंगे जब समवसरण आदि सब रचनाएं हो जाएंगी, लेकिन द्रव्य जिन भी कोई छोटी हस्ती नहीं है। इंद्र किसका अभिषेक करता है? जन्माभिषेक किसका होता है? बालक का। अगर आपको लगता है कि बालक का अभिषेक होता है तो अभी आपने जैन धर्म को समझा ही नहीं है। अगर बालक का अभिषेक होता तो आपका अभिषेक क्यों नहीं हुआ? आप भी तो बालक थे एक जमाने में। बालक का होता ही नहीं अभिषेक। वहां पर इंद्र जो स्तुति करता है उसको पढ़ लो आप, वो बालक की स्तुति है कि किसकी स्तुति है आप समझ जाओगे। जन्माभिषेक के समय जो इंद्र ने स्तुति की भगवान की, उसको पढ़ लो आप। जन्म कल्याण किसका हुआ है, बालक का या भगवान का? तो वो समझना पड़ता है। क्या है कि अपन दृष्टि नहीं समझते ना, तो खींचा तानी करके फिर ये पर्याय दृष्टि एकांत हो गया ना। पर्याय दृष्टि का एकांत भी तो दुर्नय है। तो अभिषेक किसका हुआ? द्रव्य जिन का। इसीलिए उस अभिषेक में वो उत्सव मनाया जाता है जो भगवान की भक्ति के समय होता है। वो आनंद आता है जो साक्षात जिनेन्द्र की भक्ति में आनंद आता है, वो आनंद वहां आता है। और वही आनंद अभिषेक करते समय भी आता है जिसके अंदर ये दृष्टि है उसको, सबको नहीं आता, 50 लोग खड़े हैं अभिषेक देखने के लिए, उनको ये समझ भी नहीं आता कि ताली क्यों बजा रहे हैं अपन। और कई लोग बजाते भी नहीं, और बजाते हैं तो भी ऐसे मुर्दाल ताली एकदम, जैसे कि बिल्कुल जान निकल रही हो। वो हार्दिक आह्लाद प्रकट ही नहीं होता वहां पर, क्यों? क्योंकि दृष्टि नहीं है। दृष्टि बदल जाए तो अंदर की भावना बदल जाती है। क्या ताली बजाना, अरे जन्माभिषेक, बच्चे का अभिषेक हो रहा है, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? क्या वो धर्म है क्या? ये सारे कुतर्क आते हैं दिमाग में। लेकिन कल्पना करो उस समय जब इंद्र गदगद होकर के एक सेवक के समान भगवान की कल्याणक संबंधी क्रियाओं को संपन्न करता है, इतना आह्लादित रहता है इंद्र, वो सम्यक दृष्टि, निश्चित सम्यक दृष्टि। यहां पर आप लोग जितने खड़े हैं किसी का ठिकाना नहीं है कौन सा गुणस्थान है किसका, लेकिन वो सम्यक दृष्टि होकर के इतना हर्षोल्लास के साथ वो उत्सव मनाता है। फिर यदि यहाँ कभी कोई ऐसा प्रसंग आता है, अब इसमें कई लोग एक बात और विकल्प के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि प्रतिमा का अभिषेक जो है उसको जन्माभिषेक का रूपक नहीं बनाना चाहिए। ऐसा भी एक विचार बहुत सारे विद्वानों ने प्रस्तुत किया है और कई जगह इसकी चर्चा भी चलती है। लेकिन अपन यदि शास्त्रों को देखें तो किन्हीं शास्त्रों में ऐसा उल्लेख भी मिलता है, इंद्रोऽहमिति विज्ञाप्य, ये सारी विधि भी आती है कि अपने आप को इंद्र के रूप में कल्पित कर लो और फिर ये जो अभिषेक पीठ है उसको सुमेरु पर्वत का रूपक दे दो, और जिनेंद्र भगवान जो है उनको उस समय जन्माभिषेक के समय जो इंद्र ने स्थापित किया था, वहां विराजमान किया था, वैसा मान लो और फिर बड़े धूमधाम के साथ उस अभिषेक की क्रिया को संपन्न करो, ऐसा उल्लेख भी है आचार्य प्रणीत ग्रंथों में। इसलिए यदि ऐसा उल्लेख है तो इसका खंडन करने का अपन विचार मत करो। हो सकता है दूसरा विकल्प बन जाए प्रतिमाभिषेक का कि जिसमें जन्माभिषेक का रूपक आप न डालो, लेकिन ऐसा उल्लेख भी मिलता है इसलिए अपन इसका खंडन करने का विचार मत करो। क्योंकि जो चीज शास्त्र में आई है, अगर दो बातें मिल रही है शास्त्र में तो दोनों को मान लो आप। हमने अभी ब्रह्मचारी जी से कहा था एक दिन कि अभिषेक पाठ अलग अलग प्रकार के मिलते हैं और फिर वो विधियां भी थोड़ी भिन्न होती है, तो मांगनंदी महाराज श्री द्वारा रचित जो पाठ है उसकी विधि और फिर जो दूसरे आचार्यों द्वारा रचित अभिषेक पाठ है उसकी विधि, दोनों विधि का एक साथ शिविर लगा सकते हैं कभी? अगर एक साथ ऐसा शिविर लग जाए तो फिर जिसको जो विधि इष्ट हो, अब दोनों विधियां आचार्य प्रणीत पाठों में से ले रहे हैं तो कम से कम एक ऐसी सद्भावना तो अंदर जागृत होगी कि भाई ये भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, ये भी मिथ्या दृष्टि नहीं है, ये भी मिथ्या दृष्टि। आज क्या है स्थिति, 13 पंथी 20 पंथी को मिथ्या दृष्टि समझता, 20 पंथी 13 पंथी को मिथ्या दृष्टि समझता, और है दोनों मिथ्या दृष्टि। क्या कह रहे हैं, है दोनों मिथ्या दृष्टि, क्योंकि जब तक दृष्टि भगवान पर नहीं है, एक दूसरे पर दृष्टि है, तब तक वो दृष्टि सम्यक दृष्टि कैसे हो सकती है, ऐसा समझो। तो इसलिए आपसी कषाय न करते हुए भगवान की भक्ति की तरफ विशेष उत्साह रखना चाहिए। अभिषेक की विधि जैसी भी हो, आपके अंदर भक्ति जागृत हो रही है कि नहीं ये देख लो, नहीं तो आप वहां तर्क वितर्क करो गलत बात है। चरणानुयोग में तर्क नहीं चलते, तर्क का अनुयोग जो है वो द्रव्यानुयोग है। लेकिन आज क्या विपरीतता आ गई है समाज में, स्वाध्याय करने वाले चरणानुयोग में तर्क करते हैं, ये 3 परिक्रमा क्यों, फिर ये पानी की मर्यादा ऐसी क्यों, यहां सब यहां क्यों 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 लगा रहे हैं, जबकि चरणानुयोग पूरा आदेश प्रधान है। चरणानुयोग के स्वाध्याय में आज्ञा प्रधान ही बनना चाहिए शिष्य को, और द्रव्यानुयोग में परीक्षा प्रधान ही बनना चाहिए, तत्वों की परीक्षा करना है आपको। तत्वों की तो परीक्षा नहीं कर रहे हैं और जो जिसने बता दिया उसको मान रहे हैं आंख बंद करके कि हो ऐसा होता है, चलो ठीक है होता है। वहां तो आपको पूछना चाहिए, तर्क करना चाहिए, प्रश्न करना चाहिए कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसका और स्पष्टीकरण दीजिए। लेकिन आपको यहां तर्क सूझते हैं तो ये विपरीतता है कलिकाल की। चरणानुयोग में तो जो गुरु ने कह दिया ऐसे बैठ तो ठीक है, वैसे ही बैठना पड़ेगा। पश्चिम में मुंह करके सामायिक कर ले तो फिर वहां पर यह तर्क नहीं चलेगा कि शास्त्रों में उत्तर और पूर्व दिशा लिखी है गुरु ने कहा है इसलिए अपने लिए तो पश्चिम दिशा ही है वो, क्योंकि मुझसे गुरु ने खुद कहा है। और अगर अभी मैं तर्क करता हूं तो तर्क करने के पहले गुरु का त्याग करना जरूरी है। अगर गुरु को गुरु मान रहे हैं तो फिर उनकी बात में तर्क करने का प्रश्न ही नहीं उठता, और अगर तर्क करना चाहते हो तो उनको गुरु मानना छोड़ दो, उसके बिना काम नहीं चल सकता। तो चरणानुयोग जो होता है, आचरण पद्धति जो है, वो जैसी बता दी गई है वैसी ही चलेगी। अगर किसी के गुरु ने कोई आदेश दिया है तो उसके लिए वो आगम है, और अन्य गुरु ने कोई अन्य आदेश दिया है उसके लिए वो आगम है। एक दूसरे की कटाई करने का किसी को अधिकार नहीं है। आया समझ में? अगर किसी को गुरु ने कहा है कि तुम्हारे लिए नमक त्याज्य है तो फिर उसके लिए त्याज्य है वो, और किसी को गुरु ने कहा कि नहीं तुम्हें नमक लेना पड़ेगा तो उसके लिए नमक ग्राह्य है। ये उसकी आलोचना नहीं कर सकता कि देखो नमक नहीं खाता, मेरे गुरु ने तो कहा है कि नमक खाना चाहिए, और ये देखो बड़े त्यागी बने हुए हैं नमक नहीं खा रहे। और फिर वो ये नहीं कह सकता कि कैसा रागी है, नमक भी नहीं छोड़ सकता। नहीं, एक दूसरे को देखने से ही संसार बढ़ता है, और पंच परमेष्ठियों को अथवा अपनी आत्मा को देखने से संसार घटता है। पर को देखने से संसार की वृद्धि होती है, परमेष्ठी और आत्मा को देखने से। देखिए, परमेष्ठी को हम इसलिए बतला रहे हैं यहां पर क्योंकि तत्वसार ग्रंथ में आचार्य देवसेन स्वामी ने कहा है कि तत्व दो प्रकार के, हे और उपाधेय। अब हे तत्व में पर द्रव्य है और उपाधेय तत्व में स्व और पर दोनों हैं। बहुत अद्भुत बात बता रहे हैं हम आपको। अभी तक आपने सुना होगा कि स्व तत्व ही उपाधेय है, क्योंकि लिखा भी है सतत्वम उपाधेयम अवशेषम हे मिदिनीयम, नियमसार ग्रंथ में आता है कि स्व तत्व उपाधेय। लेकिन तत्वसार में लिखा हुआ है आचार्य देवसेन स्वामी ने, पांचवी शताब्दी का ग्रंथ है, अगस्त से उसका प्रथम संस्करण अभी प्रकाशित हुआ है, ध्यान का ग्रंथ है वो, उसमें लिखा है कि पर तत्व भी दो प्रकार का है, हे और उपाधेय। और उपाधेय तत्व दो प्रकार का है, स्वतत्व और पर तत्व। तो पर तत्व कौन सा उपाधेय है? तो कह दिया पांच परमेष्ठी। पांच परमेष्ठी पर जरूर है, लेकिन मेरे लिए जहां तक उनका आलंबन अपेक्षित है वहां तक उपाधेय है। फिर जब मैं आत्म ध्यान में चला जाऊंगा, शुक्ल ध्यान में, तब ठीक है, तब तो मेरा स्वतत्व ही मेरे लिए उपाधेय रहेगा। उपाधेय मतलब ग्रहण करने योग्य। तो जिस भूमिका में गुरु का त्याग नहीं किया जाता, उस भूमिका में गुरु के त्याग का विचार भी नहीं कर सकते। लेकिन जो त्याग करने योग्य वस्तु है उसके त्याग का तो विचार जरूर करना चाहिए जिस भूमिका में त्याग करना है। तो इस तरह उनका जीवन मुड़ गया। उन्होंने जिन जानवरों को छुआ होगा उसका स्पर्श कितना अद्भुत होगा, वो जानवर धन्य हो गए। चाहे वो शेर हो, हिरण, शेर तो होंगे नहीं वहां पर, शेर तो कहीं बाहर जंगलों में होंगे, लेकिन जिन जानवरों को वो लाए थे पकड़ करके, उन सब खरगोश थे, हिरण थे, चित्र आपने देखे होंगे कई बार, उन सब को छोड़ दिया उन्होंने, मुक्त कर दिया, और उसके बाद स्वयं भी घर गृहस्थी के बंधन से मुक्त होकर चले जाते हैं दीक्षा लेने के लिए। श्वेतांबर मत में नेमी राजुल संवाद का भी प्रकरण आता है, लेकिन दिगंबर आमनाय में वो तो मौन धारण कर लेते हैं, क्योंकि जैसे ही वैरागी होकर तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं लोकांतिक देवों की सराहना के बाद, अनुमोदना के बाद, फिर वो केवल ज्ञान के पहले कुछ नहीं बोलते। अपूर्ण ज्ञान के साथ तीर्थंकर उपदेश नहीं करते, ये नियम है। फिर 56 दिन में केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता, उसके बाद फिर राजुल, राजमती जो राजकुमारी थी, वो दीक्षा धारण करके गणिनी आरिका हो जाती है। गणिनी यानी आरिकाओं में मुख्य। और उसके बाद फिर सारी बातें होती। फिर मतलब मूल बात यह है कि आज उनके जन्म कल्याणक की और दीक्षा कल्याणक की तिथि है। तो नेमिनाथ भगवान का आज अपन बड़ी श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ स्मरण करते हैं, और उनका जो क्षेत्र है वो यहीं पर है, गुजरात के निकटवर्ती सौराष्ट्र प्रांत में, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, लगभग वहां से 5-6 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर, 9 किलोमीटर ऊपर तक कि वहां पहाड़ी तक, तलहटी तक, ठीक है, 9 किलोमीटर। तो वो क्षेत्र यहां से निकट है, पर काल दोष से अभी थोड़े विवाद है वहां पर। विवादों को मिटाना असंभव तो नहीं है यदि विधि सही हो तो। एक दवाई से बीमारी ठीक नहीं होती तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि बीमारी लाइलाज है। लुईस हे ने माई स्टोरी नाम की एक छोटी सी घटना लिखी है, उसमें उसने लिखा है कि मुझे कैंसर हो गया। कैंसर होने के बाद जब डॉक्टर ने वो टिश्यू कल्चर वगैरह करके जब देखा, तब डॉक्टर ने मुझसे कहा कि 3 महीने में हर हालत में आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, सर्जरी। मैंने विचार किया कि क्या यह ऑपरेशन के बिना ठीक नहीं हो सकता। कैंसर वैसे तो लाइलाज है, ऑपरेशन के बाद भी फिर से वो मैलिग्नेंट सेल्स डेवलप हो जाते हैं, फिर वो स्थिति बन सकती है, लेकिन ऑपरेशन से कुछ जीवन दान तो मिल जाता है, थोड़ा बहुत तो सुरक्षा हो जाती है। पर क्या ये जरूरी है? क्या वास्तव में कोई बीमारी लाइलाज है? उसने अंदर ही अंदर विचार किया और डॉक्टर से कहा कि मुझे समय दीजिए, अभी मुझे जल्दी नहीं है ऑपरेशन कराने की। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि 3 महीने के बाद फिर मैं रिस्क नहीं ले सकता। बोले लुईस ही लिख रही है कि 6 महीने के बाद जब मैं वहां पहुंची और मैंने चेकअप कराया तो डॉक्टर बोलता है, हाउ स्ट्रेंज, दैट इज इम्पॉसिबल, कितनी अजीब बात है, ये तो असंभव है, तुम्हारे शरीर में कैंसर की कोई निशानी भी नहीं है, कौन सी दवा खाई? बोले उसने जवाब दिया, कोई दवा नहीं। फिर कैसे ठीक हुआ? बोले तब उसने बताया कि मैंने सिर्फ ध्यान साधना की है, जो अभी अपन सवेरे कर रहे हैं ये एक भूमिका जैसी चल रही है, इसके आगे की जो स्टेजेस है हर बीमारी ठीक हो सकती है उसमें। ये तो कई लोगों की रुचि थोड़े दिनों में सब्र टूट जाता है और छोड़ झाड़ के चले जाते हैं, जो रेगुलर इसको कर लें 6 महीने तक, तो ऐसा हो नहीं सकता कि उनके शरीर में कोई तकलीफ रह जाए। ये ऐसी विधि है, वो इतनी सुंदर विधि है, वो तो अपन चला रहे हैं जैसे चल रही है, अच्छी बात है। और कुछ लोग तो लेट लतीफ VIP लोग होते ही हैं जो बाद में बड़े ठाट से आते हैं, बिल्कुल प्रेसिडेंट जैसे पधार रहे हो इंडिया के अब्दुल कलाम साहब, और आकर के बड़े शान से बैठते हैं, उनको इसमें ज़रा भी संकोच नहीं होता कि हम कहाँ जा रहे हैं और फिर कितने समय पर जा रहे हैं, वो तो बॉस है ना, क्या कर सकते हैं, उनके लिए कौन सी दवा है भगवान जाने। हम तो आंख खोल करके भी नहीं देखते, लेकिन जो आवाज़ होती है ना खटर पटर, तो इतना तो समझ में आता है कि ये किसी के चलने की आवाज़ है, और चलने की आवाज़ किस दिशा में है ये भी तो समझ में आता है ना। अगर राइट ईयर से लेफ्ट ईयर की तरफ आवाज़ जा रही है तो लगेगा कि कोई बाहर जा रहा है, लेफ्ट ईयर से राइट की तरफ आ रही है तो लगता है कि अंदर आ रहा है। लेकिन ठीक है, आप इसका बहुमान करो या ना करो ये एक अलग बात है, पर ये नमोकार का ध्यान है, कोई छोटी मोटी वस्तु नहीं। आप जितना इसका अभिनय करेंगे, आपके लिए भविष्य में जब इसकी जरूरत होगी तब ये चीज आपके लिए उतनी ही दुर्लभ हो जाएगी। ये नियम है देवशास्त्र गुरु की, जो जितनी अभिनय करता है मौके पर उसको देवशास्त्र गुरु उपलब्ध नहीं हो पाते, और उसका फल बहुत प्रचंड होता है। अपन बाहर कुत्ते को पत्थर मार दो तो उतना तीव्र पाप नहीं बंधेगा जितना देवशास्त्र गुरु की अभिनय या आसाधना करते समय बंधेगा। आप यहां पर बैठे बैठे अगर कोई मन में हल्का सा भी विचार कर लो, अशुभ विचार, तो उसका परिणाम बहुत प्रचंड होगा। और वहां पर आप किसी के बारे में ज्यादा बुरा सोच लो तो भी उस पाप को तो काटा जा सकता है थोड़ा पुरुषार्थ करके। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, अन्य क्षेत्र में किया हुआ पाप धर्म क्षेत्र में नष्ट होता है, लेकिन धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति, धर्म क्षेत्र में किया हुआ पाप वज्रलेप बन जाता है। वज्रलेप उस लेप को बोलते हैं जो पत्थर पर चढ़ाया जाता है, पत्थर टूट जाए लेकिन उसकी चमक न जाए, वो लेप होता है। उसी प्रकार पाप ऐसा है कि उसका फल फिर जीव को भोगना पड़ता है, और ऐसा पाप हो जाता है कभी कभी कषाय के कारण। इसलिए अपने को सबसे पहली शिक्षा ये ग्रहण करनी चाहिए कि अपन नम्र बन जाए, ज्यादा अकड़ अच्छी नहीं होती। अनादिकाल से अपन अकड़ रहे हैं, इसीलिए आत्मा पकड़ में नहीं आ रही। जब तक अकड़ नहीं जाती आत्मा पकड़ में नहीं आती। याद रखना, शब्दों में पकड़ना अलग बात है, कोई सार नहीं है शब्दों में पकड़ने में। अंदर में जिसने नहीं पकड़ा उसको क्या कोई मतलब है। नेमिनाथ भगवान चले गए, दीक्षा ले ली और फिर उन्होंने तपस्या की, 56 दिन केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। वो भूमि आज विवादित है, और उस विवाद को युक्ति से शांत किया जा सकता है, कषाय से। आप सोचो कि हम युद्ध स्तर पर जाकर के कुछ कर लें तो आपके पास उतने सैनिक नहीं है, ये पहले याद रखना, कि जो उनकी फौज का मुकाबला कर सके। युद्ध की बात मत सोचो, दिमाग से काम लेने से कुछ रास्ता निकल सकता है, कुछ कभी कभी समझौता भी करना पड़ता है परिस्थिति के कारण। कई ऐसे स्थान है जहां पर दिगंबर श्वेतांबरों में समझौता हुआ है कि इतने समय तक तुम कर लेना, इतने समय तक हम। उसमें भी पीड़ा तो होती है, लेकिन फिर भी सारा जाता देख के आधा लीजिए बांट, ये एक नीति है। पूरा का पूरा नष्ट होने से बेहतर तो ये है कि आधा बचा लो। तो अगर विवेक से काम लिया जाए और युक्ति से काम किया जाए तो फिर कुछ अब भी बच सकता है। इसलिए थोड़ा दिमाग से काम लेने की जरूरत है, और इसमें ये मत समझना कि भाई जिम्मेदार लोगों को ये काम करना चाहिए। जो गैर जिम्मेदार है अथवा जो उसमें शामिल नहीं है वो भी अपने सुझाव तो रख सकते हैं, वो भी अपने विचार तो जिम्मेदार लोगों के पास भेज सकते हैं कि भाई ऐसा करने से कैसा रहेगा। प्रश्नात्मक रूप से रखो, थोपो मत कोई बात, थोपना किसी को भी पसंद नहीं होता। आप जबरदस्ती किसी को कुछ बोलोगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। आप विनम्रता से कोई बात रखोगे तो फिर वो बात उसको समझ में आ सकती है। जो काम दबाव से सिद्ध नहीं होते वो काम अक्सर विनय से सिद्ध हो जाया करते हैं। जो काम लेख निकालने से नहीं बनता वो साथ में रहने पर हो जाता है। जैसे स्थितिकरण है, स्थितिकरण कई बार पत्रिकाओं छापने से नहीं होता। छाप दिया आपने जिन भाषित में किसी साधु के बारे में कुछ, या और किसी पत्रिका में छाप दिया, वो साधु जीवन में नहीं सुधरने वाले जिनके खिलाफ आपने छापा है। क्यों? क्योंकि आपने बदनाम करके उनको सुधारने की कोशिश की। बदनाम हो जाने के बाद कोई नहीं चाहता कि अब सुधरने से फायदा क्या है, बोले बदनामी तो हो गई। क्योंकि नाम का मोह शरीर से ज्यादा प्रबल होता है। शरीर का मोह छोड़ा जा सकता है, नाम का मोह नहीं छूटता। तो आपने जिसको बदनाम कर दिया आप सोचोगे ये सुधर जाए, तो पहले आप सुधर जाओ। क्योंकि आपने जिस कषाय से ये कार्य किया है उस कषाय ने आपको उनसे भी नीचे गिरा दिया। देखो, निंदा करते समय जिसकी निंदा की जाती है वो अपने से बड़ा बन जाता है। हम बता रहे हैं, बहुत गहरा रहस्य बता रहे हैं, कैसे बन जाता है उस पर विचार करना। देखना, उसने घोर पाप किया हो लेकिन निंदा करने वाला उससे छोटा क्यों हो गया? क्योंकि निंदा करने वाले ने देव शास्त्र गुरु को छोड़ दिया, पंच परमेष्ठियों से अपना ध्यान हटा लिया, शास्त्रों से भी अपना उपयोग दूर कर लिया, और अपनी आत्मा को भी उतने क्षणों के लिए भूल कर उसके अवगुणों में अपना ध्यान केंद्रित कर दिया। कहने का मतलब ये हुआ कि उसके अवगुण इतने महत्वपूर्ण हो गए कि कि इसने अपना सर्वस्व लुटा दिया और उसके अवगुणों पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर दिया। तो जिसके अवगुणों पर मनुष्य अपना सर्वस्व लुटाकर ध्यान केंद्रित कर दे, क्या वो छोटी हस्ती हो सकती है? बताओ, इससे तो बड़ा हो ही गया वो। वैसे अगर दूसरी दृष्टि से विचार करें तो अवगुण कभी भी बड़े नहीं होते, लेकिन अवगुणों पर ध्यान देने वाला निंदा कब करेगा कोई? जब तक अवगुणों पर ध्यान एकाग्र नहीं करेगा तब तक निंदा संभव है क्या? और अवगुणों को देखने के बावजूद जब तक अपने अंदर कषाय जागृत नहीं होती तब तक निंदा नहीं होती। तो अपन पतित हुए कि नहीं, तो वो विधि नहीं है स्थितिकरण की। अगर किसी साधु को सुधारना हो तो फिर इस उपाय से कभी नहीं सुधारा जा सकता। सामान्य मनुष्य को नहीं सुधार सकते, जिसको आप डांट सकते हैं उसको भी नहीं सुधार सकते आप। फिर साधु की तो बात दूर है, वो तो पदवीधारी है और उनको हजारों लोग नमस्तु कर चुके हैं, और आप अगर उनकी निंदा करेंगे तो वो ध्यान क्या देंगे आपकी बात पर? नहीं, निंदा उसका उपाय नहीं है स्थितिकरण का। इसी प्रकार कोई भी विवाद हो, उस विवाद का समाधान साम दाम दंड भेद सब नीतियों को लेकर के करना पड़ता है। जहां जिस नीति की अपेक्षा हो वहां पर समय देखकर और स्थिति देखकर उस नीति का इस्तेमाल करना चाहिए। एक नीति सब पर लागू नहीं होती। ककड़ी को कुल्हाड़ी से नहीं काटा जाता क्या? दृष्टांत से आप बहुत जल्दी समझते हो और फिर आपके चेहरे पर लहर भी आ जाती है। बाकी बातें सुनते समय आपके चेहरों को देखकर हमें घबराहट होती है कि ये क्या हो रहा है। ककड़ी को कुल्हाड़ी से नहीं काटा जाता, उसके लिए इशारा काफी, कोमल होती ना। तो उसी प्रकार जहां पर जो दवा लागू करना हो वहां पर वही दवाई दीजिए। बच्चे को क्या आप हाई पावर की दवाई देंगे या चिल्ड्रंस डोज देंगे? बताइए। तो जहां जो डोज जरूरी है वहां पर वही डोज दीजिए। सही डॉक्टर बनिए, और नहीं है आप डॉक्टर तो फिर किसी डॉक्टर से मिलिए। बैठे हुए हैं एक डॉक्टर वहां एमपी में, बिना बारह में। और भी बड़े बड़े लोग हैं, कितने आचार्य हैं, कितने साधु हैं, कितने विवेकी विद्वान हैं, सबसे परामर्श कीजिए। या फिर एक साथ सबको बुला करके बैठा लिए कोई रास्ता निकालने के लिए। और सुधा सागर महाराज जी तो कहते हैं कि दुनिया की कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसको बनिए का दिमाग हल ना कर सके। बनिए का वो दिमाग होता है, बोले कोई जीत ही नहीं सकता दुनिया में बनिए से। तो क्यों आप निराश होते हो? निराश होने की बात नहीं है, ऑप्टिमिस्टिक बनिए, निराश होने की कोई बात नहीं। तो नेमिनाथ भगवान का स्मरण करते हुए आज अपन संसार अनुप्रेक्षा की दो गाथाओं से इस व्याख्यान को समाप्त करते हैं। आज नेमिनाथ भगवान की जन्म जयंती भी है और दीक्षा दिवस भी है। कल पार्श्वनाथ भगवान की मोक्ष सप्तमी है। कल का भी उपदेश मजेदार होगा, उनकी पार्श्वनाथ भगवान की कथा है, बड़ी सुंदर कथा है।